हमारे साथ इस वक्त MWM के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब मौजूद हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनको लाइन पर ले सकें। आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आगा साहब, शहादतों का सफ़र जारी है, और यहाँ पे क्वेटा के धमाके हुए 2 मरतबा, उसके बाद अब्बास टाउन का वाक़या हुआ, और अब एक ऐसी शख्सियत हमसे छीन ली गई जो कि अच्छाई की और खूबी की, कुव्वतों की, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी, और जो हर जगह अच्छाई की, कुव्वतों की पुष्तपनाही के लिए सब सरगर्म नज़र आती है। आज के इस वाक़े के बारे में आप क्या फरमाएंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शिया नस्ल कुशी का तसलसल है जो गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान में शुरू हुई। पाकिस्तान के रियासती इदारों और दहशत गर्दों के दरमियान और बैन अवी कवतों के दरमियान एक कोलिशन पाकिस्तान में वजूद में आया, जिसने 3 दहाइयों से अहल तशैयों को पाकिस्तान की सरजमीन पर निशाने पर रखा है। उसके बाद इन्होंने अहले सुन्नत को भी कमजोर किया और सोसाइटी में बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब कर दिया। दहशत गर्दों के जत्थे के जत्थे तैयार किए गए, ट्रेनिंग कैंप बनाए गए और स्ट्रेटेजिक एसेट बनाया गया। लिहाजा अब ये वही कातिल दिल दलाते फिरते हैं इस मुल्क के अंदर, और हमारे रियासती इदारों को अभी तक समझ नहीं आई कि वो थ्रेट जो बॉर्डर पर था वो मुल्क के अंदर कैसे आ गया, वो इन्हीं कातिलों के जरिए आया है। और आज पाकिस्तान के अंदर ये लोग अहले तशैयों पर हमले करते हैं, अहले सुन्नत पर करते हैं, हिंदुओं पर, ईसाइयों पर करते हैं, पाकिस्तान के आवाम को मायूस करना चाहते हैं, इन्हें डराना चाहते हैं, पाकिस्तान से नाउम्मीद करना चाहते हैं। ये एक खुद एक शिया का कातिल नहीं था, आज एक मुअल्लिम का, वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो इल्म के चिराग जलाने वाली शख्सियत थी। ये वही लोग हैं जो स्कूलों को बम्बों से उड़ाते हैं, फिर मारते हैं, कत्ल करते हैं, शहीद करते हैं। ये इल्म दुश्मन है, इंसान दुश्मन है, और एक खास मकसद फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। ये ध्यान में रखें, एक खास एक्सट्रीमिस्ट तबके से ताल्लुक रखते हैं ये लोग, और इनको यहाँ तक पहुँचाने में हमारे रियासी इदारों का मरकजी किरदार है। आज इन्हें हर कोई इस्तेमाल करता है, अब ये कातिलों की शक्ल में दिखते हैं, खुदकुश हमलावरों की शक्ल में दिखते हैं। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि अवामी तौर पर हम इतना प्रेशर डेवलप करें पाकिस्तान और बैन अवी सतह के ऊपर, ताकि हमारे रियासी इदारों और इनके दरमियान जो कोलेशन वजूद में आया हुआ है ये टूटे। हमें इन कुवतों को रसुआ करना होगा जो हमारे रियासी इदारों में घुसी हुई है और कातिलों की सरपरस्त है। ये 10 से बस नहीं होते। हम तालबा करते आए क्वेटा के वाकयात के बाद भी कि पाकिस्तान के अंदर सवाद की तर्ज का टारगेट ऑपरेशन होना चाहिए, फौजी ऑपरेशन होना चाहिए कातिलों के खिलाफ, लेकिन कोई तैयार नहीं है।
आगा साहब, मैं एक सवाल आपसे करूंगा। आगा साहब, ये हमने अभी रिसेंटली देखा, क्वेटा के वाकयात हुए 2 दफ़ा, मतलब एक बड़े बहुत बड़ी मकदार में जो है बारूद जो है उसके धमाके किए गए क्वेटा में, और उसके बाद अब्बास टाउन का वाकया हुआ। आप MWM के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और एक ऐसी जमात जिसने कि बहुत जल्दी, बहुत कम मुद्दत में कौम को दोबारा उम्मीद के चिराग दिखा दिए और नज़्म व ज़ब्त की तरफ आप लोग आगे बढ़े हैं। मैं कहूँ कि ये सिक्योरिटी का मामला तो हमारा अभी साल से ये चला आ रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं ऐसा कि हम लोग खुद अपनी मदद आपके तहत कुछ ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज का क्याम वजूद में लाएं जो कानून के दायरे में रहते हुए इलाकों में अफराद की मदद करें और इलाके में मदद करें। हमारे जो है जो सिक्योर, जब लोग अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और कमाई के धंधे में मसरूफ़ हैं, तो लोग कुछ ऐसे होने चाहिए जो दिफा का और उसका काम अपने ज़िम्मे ले सकें। इस सिलसिले में आप लोग क्या कर रहे हैं?
2 बातें हैं, एक तो रियासती इदारों की जिम्मेदारी है।
वो तो नाकाम हो गए, वो नाकाम हो गए,
वो बाजोर नाकाम नहीं है। ये लोग मिले हुए कातिलों के
साथ आसान, बिल्कुल
नाकाम नहीं है
जी।
इन्हें पता है कि इनके अड्डे कहाँ हैं, ये कहाँ बैठते हैं, कहाँ से चलते हैं, कहाँ से बारूद मुंतकिल होता है, कहाँ से कातिल मुंतकिल होते हैं। ये नाकाम नहीं है, ये उनके शरीक है, उनके साथी है।
तो इस सूरत में मुल्क के लिए क्या किया जा सकता है आपकी नजर में? क्या कर सकते हैं अगर इदारे, इस तरह के इदारे, हमारी हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविल एस्टेब्लिशमेंट अगर ऐसे चीजों की पुष्टपनाही कर रही है खौफ की वजह से या मिसाल की किसी और वजह से, तो इस सूरत में हम लोग मुल्क को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, या हम मकतब तशैयों के पैरोकारों की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं?
खौफ की वजह से नहीं है ये, इन्होंने इनको अपना सर्टिफिकेशन बनाया हुआ है, ये साथी है, ये क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को शिकंजे में लिया हुआ है। इन सब ने पॉलिटिकल क्रिमिनल्स, जनरल क्रिमिनल्स और ये दहशतगर्द जो क्रिमिनल्स हैं, عوامی طاقت، عوامی بیداری، پاکستان اور پاکستان کی سطح، دنیا کی سطح کے اوپر مل کر انہیں عوامی طاقت کے ذریعے اس کولیشن کو توڑا جا سکتا ہے. آپ جتنے بھی سیکیورٹی کے حد ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے. ابھی ہم دوستوں سے کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم سیکیورٹی کی ایجنسیز اپنی رجسٹرڈ کرائیں، یہ ٹھیک ہے ہم کریں گے، لیکن ریاست کس نام کا چیز کا نام ہے، سیکیورٹی کے ادارے کس چیز کا نام ہے، یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کہاں ہے؟ انہیں اتنا پاکستان کی اکانومی کے اوپر یہ اتنا بڑا بوجھ ہے، یہ کس لیے پالے جاتے ہیں؟ یہ قاتلوں کا ساتھ دے، قاتلوں کو پالے، دہشت گرد پالے اور بے گناہ رہتے وہاں پر ان کو چھوڑ دے. اس لیے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ناکام ہوئے ہیں، یہ ان کے جرم میں برابر کے شریک ہیں. اس لیے ہم پاکستان کی فوج کے سپہ سالار سے کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ ہم آگے بڑھو اور ثواب طرز کا آپریشن قاتلوں کے خلاف کرو. اگر نہیں کرتے تو دو ہاتھ سے خالی نہیں ہے. آپ ان کے بھی سپہ سالار ہیں، پھر ان کے بھی ساتھی ہیں، یا آپ ڈرائیلے نہیں کر سکتے. دونوں صورتوں میں آپ کو حق نہیں ہے. ہمارا سپہ سالار، ہماری سیکورٹی کے اداروں کا سپہ سالار رہنے کا، ایک نرم آدمی کو، ایک ڈرے ہوئے آدمی کو، ایک انکمپیٹنٹ کو یا قاتلوں کے ساتھی کو حق نہیں ہے ہمارا سربراہ، ہمارا سپہ سالار بنے. تین سال کے ایکسٹینشن کا کیا فائدہ ہوا؟ آج اس ملک میں جنگل بنا دیے گئے، اس ملک کو کوئی قانون نہیں ہے. لہذا یہ خود شامل ہے قانون شکنی میں، برابر کے شریک ہیں. لہذا آپ دوستوں سے، آپ کے سامعین جو دنیا میں اور ناظرین ہیں، میں آپ کے توجہ سے ان کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ریاستی ادارے ان قاتلوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے برابر کے شریک ہیں، انہیں ٹریننگ انہوں نے دی ہے، انہیں پتا ہے کہاں خود کش حملہ آوروں کی تربیت ہوتی ہے، انہیں پتا ہے کیسے وہ منتقل ہوتے ہیں، بارود کہاں سے چلتا ہے، سب کچھ انہیں پتا ہے. لیکن یہ ملک کو نامن کرنے میں یہ بکے ہوئے جرنیل ہیں، یہ بکے ہوئے ریاستی ادارے ہیں، یہ عالمی قوتوں کے ایجنٹ ہیں، یہ پیسے لے کر ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں.
آغا صاحب، یہ آپ، آغا صاحب، یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں اس وقت، جس جو جس اس کو کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے پروگرام اس وقت کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، پورے یورپ میں اور برطانیہ میں دیکھے جا رہے ہیں، اور آپ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، بہت ذمہ داری والی بات کر رہے ہیں، اور جس ذمہ دار عہدے پر ہیں آپ، کہ اگر یہ ہماری فوج کے سپہ سالار اس وقت آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، یا ان کے مددگار بنے ہوئے ہیں، یا کسی بھی حوالے سے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا خوف کی وجہ سے، یا اپنے مفادات کی وجہ سے، یا پیسے کی وجہ سے، جس حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں جب پہلا دھرنا ہوا تھا تو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو، نااہل وزیر اعلیٰ کو برطرف کیا گیا.
آپ میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں کہ آپ پہلے پاکستان بھی ٹوٹ چکا، بنگلہ دیش نہیں بن چکا، کیا اس میں ہمارے جنرل ملوث نہیں تھے، ہمارے ریاستی ادارے ملوث نہیں تھے؟ میں پوری دنیا میں پاکستانیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ باقی ماندہ پاکستان کو بھی کئی بنگلہ دیش بنانے پر تلے ہوئے ہیں، یہ وطن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر تلے ہوئے ہیں. لہذا اب ہم نظارہ گر نہیں رہ سکتے، ہم تماشا بین نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم میدان میں حاضر ہوئے ہیں. ہم شہادتوں سے نہیں ڈریں گے، یہ شہادتیں ہماری کمزوریاں نہیں، یہ ہماری طاقت ہے. ہم تاریخ میں خون کے دریا سے گزرے ہیں، ہمارے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم مزدل نہیں ہیں، ہم شجاعت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ میدان میں موجود رہیں گے، اپنی قوم کو بیدار کریں گے، اپنی طاقت میں اضافہ کریں گے، اور اپنی مادر وطن ان ظالموں کے شکنجے سے نجات دلائیں گے. یہ ہماری مادر وطن ہے، ہم نے اسے بچانا ہے. یہ ہمارا شہیدوں کا خون اس لیے گر رہا ہے کہ ہم پاکستان کے دشمنوں کے ساتھی نہیں ہیں، ہم ایجنسیوں کے ہاتھ میں نہیں کھیلے، ہم پاکستان کے دشمنوں کے ساتھی نہیں بنے، اس لیے ہمیں سزا دی جاتی ہے. ہم پاکستان کی نیشنل ڈیفینس لائن ہے، ہم پاکستان کی فطری دفاعی لائن ہے. پاکستان میں شیعوں کو اور اہل سنت کو کمزور کر کے ان دہشت گردوں کو طاقتور بنانا پاکستان کو کمزور کرنا ہے.
آغا صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے، آپ نے بتایا کہ ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سول اسٹیبلشمنٹ سب، مطلب ہے اس وقت، مطلب ہے ان کی یا حامی ہیں، یا ان کے طرفدار ہیں، یا خاموش ہیں، کسی بھی حوالے سے انہی کے ساتھی نظر آتے ہیں. اس صورتحال میں آپ نے کہا ہے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، تو الیکشن میں حصہ لینے سے، الیکشن کے پروسیس کے بیچ بھی جب ہم حصہ بنیں گے، اس نظام کا ہم حصہ بنیں گے، تو وہ کس حد تک ہم اس صورتحال کو تبدیل کرنے میں یا اس کو بہتر کرنے میں ہم ایک رول پلے کر سکیں گے؟
हम चाहते हैं हमारी आवाज सड़कों में हो, गलियों में हो, मीडिया में हो और ऐलानों में भी हो, वहां पर भी हम यही फरियाद बुलंद करें, हमारी आवाज वहां पहुंचनी चाहिए। पाकिस्तान के गैरतमंद माता वतन के वफादार बेटों की आवाज वहां पहुंचनी चाहिए। देखिए मौला अली ने इरशाद फरमाया है, लैस अल-आकिल मन अरफ अल-खैर मिन अश-शर बल इन्नमा अल-आकिल मन अरफ खैर अश-शर्रैन। अकलमंद वो नहीं है जो अच्छाई और बुराई में तमीज दे, अकलमंद है जो दो बुराइयों में से कम बुराई का इंतखाब कर सके। ये हम मैदान खाली छोड़कर एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज के लिए, दहशतगर्दों की हामियों के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते, ताकि वो पार्लियामेंट पर कब्जा करके और हमारे वतन को नुकसान पहुंचाए। हम जितना भी कर सकते हैं अपनी आवाज को ताकतवर तरीके से हर जगह पहुंचाएंगे। अगर हम मैदान खाली छोड़ दें, इलेक्शन का बाइकाट कर दें, तो कितने फायदा होगा? उन्हीं कुवतों को फायदा होगा जो पाकिस्तान तोड़ने के दर पे है, उन्हीं को फायदा होगा। वही लोग पार्लियामेंट में आके बैठ जाएंगे, फिर वही खतरनाक फैसले करेंगे। लिहाजा हमने पार्लियामेंट में जाना है, कोशिश करनी है, ताकि हर अहमान में, हर फोरम में हमारी आवाज पहुंचे, हमारी ताकतवर आवाज पहुंचे, वतन से मोहब्बत की आवाज पहुंचे, अमन की आवाज पहुंचे, नफरतें मिटाने की आवाज पहुंचे। इंशाल्लाह ये रास्ता अकलमंदों का रास्ता है, और यही रास्ता जो है हम इंशाल्लाह ऐलान में भी जाकर इन्हें रुसवा करेंगे, हर फोरम में इन्हें रुसवा करेंगे और दुनिया वालों को बताएंगे कि ये खैर सारे जमा है, मुजरिम जमा है, हमारा वतन तोड़ना चाहते हैं ये जालिम, इस वतन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लिहाजा हम इनकी साजिशों को नाकाम करेंगे और आने वाले इलेक्शनों में इन दहशत गर्दों के हामियों को कोशिश करेंगे कि शिकस्त हो। जो भी दहशत गर्दों का साथी है, जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ने का मंसूबा बनाया है, जो बाज कुवतों से, आलमी कुवतों से पैसा लेके इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, हम पूरी ताकत से मैदान में हाजिर रहेंगे, इनका रास्ता रोकेंगे, ताकि इन्हें शिकस्त भी हो और हमारी आवाज भी पार्लियामेंट में पहुंचे।
आखिरी सवाल आपसे करूंगा किबला, कि ये बताइए कि इस वक्त हमारे मकतबे तशय्यो के पैरोकारों में मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो सियासी मामलात के बारे में अपने नज़रियात पेश कर रहे हैं, और ये अलग अलग फोरम्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। आप इस वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से मकतबे तशय्यो के पैरोकारों में, ताकि एक कुव्वत बन सकें और एक पॉइंट पर हम लोग फोकस कर सकें, उस सिलसिले में आपकी क्या कोशिशें और आपकी क्या काविश हैं और आपकी क्या नुक्ता नज़र है?
बोर्ड लिया है, शिया कौम के मुख्य तबकात को अन बोर्ड लिया है। मेरी चंद दिन पहले हजरत साजिद तकी साहब से भी मुलाकात हुई, उनसे भी मिला हूँ। अभी एक ज़ाब्ते अखलाक इंशाल्लाह जल्द ही जो है साइन होने वाला है, ताकि हम जितना भी मुमकिन हो अपनी कुव्वत को यकजा करें और अपनी मिल्लत को, अपने वतन को इन मुश्किलात से निकालने के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सके।
तो ये यानी कौम को, लोगों को एक अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए कि इसमें एक अच्छा, एक ऐसा हो जाएगा, वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सकता है कि जो कि कौम को यकजा और मुत्तहिद कर सके और मुख्तलिफ उमूर को इस वक्त फेस
ये, 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 ये आने वाला है। बुजुर्ग उलमा के भी साइन होंगे, हमारे भी साइन होंगे, और इंशाल्लाह हमें जितना भी मुमकिन हो सकेगा हम अपनी ताकत को यकजा करके इंशाल्लाह इन आने वाले हालात में एक पॉजिटिव और मजबूत और ताकतवर रोल प्ले करेंगे। हम नजारागर नहीं रहेंगे, हम मैदान में रहेंगे, ये हमारी मादरे वतन है। और जिस कौम की सियासी ताकत नहीं होती, वो अपने हकूक की भीख मांगती है, उसे ठोकरें मिलती हैं। लिहाजा हमें देखना चाहिए हमारे दुश्मन भी इलेक्शनों में आकर सियासी ताकत बनकर पार्लियामेंट में पहुंचना चाहते हैं और अपनी मर्जी के खेल खेलना चाहते हैं। लिहाजा हमने हर जगह इनका रास्ता रोकना है, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह की मदद शामिल आ रही, इमाम जमाना की तायर शामिल आ रही, तो हम पाकिस्तान की सरजमीन पर अपनी कौम और मिल्लत को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। हम गैरतमंद हैं, शुजा हैं, बहादुर हैं, बाबसीरत हैं, हिकमत और तदबीर के साथ इंशाल्लाह इन हालात का मुकाबला करेंगे।
आ साहब, मैं इस प्रोग्राम के तवसुत से आपको यहाँ पे, क्योंकि हमारा रबता रहता है और यहाँ के अफराद को और जवानों को और मुक्तदर अफराद जो वो कर रहे हैं, बहुत बेचैनी यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे नहीं, अभी मैं पिछले दिनों फ्रांस में था, पेरिस में, यूरोप में और अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, तमाम ममालिक में लोगों की नज़रें पाकिस्तान के हालात पर लगी हुई हैं और हम बड़ी तवक्कात, लेकिन आपको ये बात पैगाम आपके तवसुत से हम पूरी मिल्लत को वहाँ पर पहुँचा देना चाहते हैं कि यहाँ के लोग भी हालात पर नज़र रखे हुए हैं और नज़्म और ज़ब्त के साथ आपके कदम ब कदम और आपकी हिमायत में और इन हालात मुश्किल हालात में आपकी मदद के लिए बिल्कुल कोशां और तैयार हैं, और इंशाल्लाह तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह हम लोग यकजहती के साथ इस इन मामलात को आगे बढ़ा सकेंगे। आपकी तरफ से क्या पैगाम है यूरोप में और मगरिब में रहने वालों के लिए?
सबसे पहले तो मैं यूरोप के मोमिनीन का, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के मोमिनीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने धरनों में भरपूर साथ दिया, यकजहती का मुजाहरा किया और इसका यहाँ पर बहुत असर हुआ। पाकिस्तान में 1 लाख बंदा निकले बाहर, वहाँ पर 1,000 बंदा बाहर आ जाए तो वहाँ का असर ज्यादा होता है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि बाखबर रहे, हमें पाकिस्तान के अंदर बाद मुख्तलिफ ममालिक सरमाया लगाकर और अपना इस मुल्क को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। हमें दुनिया के ताकतवर मुल्कों के असर नफूज का भी मुकाबला करना है, दाखिली सतह पर भी साजिशों का मुकाबला करना है। आप जितना हमारे साथ रहेंगे, साथ देंगे, मदद करेंगे, आपकी बाकी दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हुए बहुत वैल्यू और अहमियत है। आप यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खड़काए शिया नस्लकुशी के खिलाफ, आलमी जो इंसानी हकूक के इदारे हैं उनके दरवाजे खड़खड़ाए और पाकिस्तान की हयाती हकमा और रियासती इदारों पर भी प्रेशर डालने वाला साथ दे। हम अपना वतन बचाना चाहते हैं, हम अमन के लिए उठे हैं, हम पाकिस्तान के मजलूमों के लिए उठे। हमारी आवाज ये है, इस वतन में जो भी मजलूम है हम उसके साथी है, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, कोई भी हो। हमारे मौला अली ने इंसानी मुआशरे को दो तबकों में तकसीम किया था, जालिम और मजलूम, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम नहीं कहा था, कहा जालिम और मजलूम, और हुक्म दिया था कि जालिमों के दुश्मन बन के रहना और मजलूमों के हामी और मददगार बन के रहना। लिहाजा हम हर मजलूम के हामी है तब वो काफिर ही क्यों ना हो, हर जालिम के दुश्मन है तब वो मुसलमान ही क्यों ना हो। ये हमारे शहीद कायद का नारा था और इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाने में हमारा रोल था और इंशाल्लाह इसको बचाने में भी हमारा रोल होगा। हम घरों में नहीं बैठेंगे, हम मैदान में हाजिर रहेंगे, आपकी दुआओं की, साथ की, मदद की, जो जो जिसमें तमन्नाई है उसकी हिमायत की जरूरत है। इंशाल्लाह रास्ते में रहना चाहिए हमें ताकि हम इस मादरे वतन को इस दलदल से निकालें, इसके इस्तकलाल की आजादी की हिफाजत करें, इसकी हुरमत की हिफाजत करें। आए दिन इस पर ड्रोन हमले होते हैं, हमारे लिए मुश्किल है, हम अपने हाउस को इन आर्डर करें, इस मुल्क को दहशत गर्दों से पाक करके पाकिस्तान बना दे। आप सबका शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आपके सामीन और नाजीन का भी शुक्रिया।
आपके बहुत शुक्रिया, आपने इस पहर में वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नाफिर हो और परवरदिगार आलम आप सब दोस्तों को जो दीन की खिदमत के लिए मुखलिसाना दिन रात एक किए हुए हैं, परवरदिगार आलम आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हम सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए और हमें इत्तेहाद और यकजहती के साथ आगे बढ़ने की तौफीक नायत फरमाए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व
रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु मौला अली मदद। तो नाज़रीन किराम, ये थे अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब, सेक्रेटरी जनरल MWM के। बड़ा अहम नुक्ता जो उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात हुई जनाब अल्लामा साजिद नकवी साहब के साथ और इत्तेहाद और यकजहती की कोशिशें आगे बढ़ रही हैं और हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इत्तेहाद और यकजहती की तरफ लेकर जाए। और उलमा सब की खिदमात हैं, माजी में शहीद आरिफ हुसैनी के दौर में बड़े जैद उलमा जो है उन्होंने मैदान अमल में कदम रखा और इत्तेहाद और यकजहती की जो फ़िज़ा कायम की गई थी आज इंशाल्लाह अगर वो दोबारा कायम हो गई और ये जो मुखलिसाना कोशिशें करने वाले उलमा हैं और उनके साथ नौजवान हैं, ये कुव्वतें यकजा हो गईं और एक सूरज की रोशनी के आगे अगर कागज़ रखा जाए तो कोई असर नहीं होता, लेकिन उसी को अगर छोटे से डायमीटर से मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए, आदशी शीशे के ज़रिए एक पॉइंट पर फोकस कर दिया जाए तो वो छोटे से दायरे में जो रोशनी होती है वो उस कागज़ को आग लगा देती है। इंसान की कुव्वतें और सलाहियतें भी अगर इस तरह एक पॉइंट पर फोकस कर दी जाएँ तो वो अपने नुक्ते नज़र को भी वाजे और रोशन तरीके से पहुँचा सकती हैं और उसके अलावा अपने मकसद को भी हासिल कर सकती हैं। अल्लाह की तौहीद बाद की बात है, पहले अपने वजूद में हमें तौहीद पैदा करनी है, पहले अपनी कौम और मिल्लत में तौहीद पैदा करनी है। और इसके साथ ही हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की तरफ और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लाइंस खुली होंगी, आप भी मुख्तसरन अपनी अपना खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश कर सकते हैं शहीद की खिदमत में और इंशाल्लाह लाइंस आपके लिए खोल दी जाएंगी। फ़िलहाल मुशर्रफ हुसैनी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।